रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मित्रगण नमस्कार। हम फिर चलते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए और सुनते हैं अपना अगला कार्यक्रम पठामी संस्कृतम। मित्रों, मैंने पिछली कड़ी में तुमसे बताया था काशी से पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी के बारे में, तो उन्हीं का एक और प्रश्न हम देखेंगे आज की कड़ी में। पितरौ कस्य च लोचनहीनौ केन कथम तौ निहतौ दीनौ। वह कौन सा व्यक्ति था जिसके माता पिता दोनों ही आंखों से अंधे थे? तुमने श्रवण की कथा सुनी है जो अपने माता पिता को कावड़ में बैठा करके तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था क्योंकि दोनों ही आंखों से अंधे थे। केन कथम तौ निहतौ दीनौ, और उन दोनों दीन व्यक्तियों को, अंध व्यक्तियों को किसने मार डाला? तो ये भी कहानी है कि जब श्रवण उनको कांवड़ में बैठा करके तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था और रात का अंधेरा था, वह अपने माता पिता के लिए, माता पिता की कांवड़ को तालाब के निकट रख करके उनके लिए तालाब से पानी लेने गया। तो जब वो अपने लोटे में पानी भर रहा था तो उस लोटे से उस पानी भरने का डुब 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 स्वर सुनाई पड़ा। वहां जंगल में राजा दशरथ शिकार करने के लिए गया हुआ था, तो उसने जब पानी में डुब 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 की आवाज सुनी तो उसे लगा यहाँ कोई जंगली जानवर, बड़ा जानवर, बाघ, शेर, इस प्रकार का कोई जानवर पानी पी रहा है। तो दशरथ ने उस शब्द के अनुमान से, जहाँ से आवाज आ रही थी उस आवाज के अनुमान से अपना बाण चलाया और उस बाण के लगने से श्रवण की मृत्यु हो गई। तो जब राजा वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि श्रवण की मृत्यु हो गई थी और उसके दोनों माता पिता दोनों ही विलाप कर रहे थे। राजा को बहुत दुख हुआ और बहुत पछतावा भी हुआ और श्रवण के माता पिता ने कहा कि अब हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो हम भी जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन हे दशरथ, तुमने बिना विचार किए हमारे बेटे पर तीर चलाया और उसके वियोग से, उसके दुख से अब हमारे प्राण निकल रहे हैं, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे प्राण भी इसी प्रकार पुत्र के वियोग से तुम्हारे प्राण जाएंगे। तो दशरथ ने उनकी बहुत प्रार्थना की, उन्हें समझाया बुझाया कि वो प्राण त्याग ना करें, लेकिन श्रवण के माता पिता नहीं माने और उन्होंने प्राण त्याग दिए और दशरथ अपने राज्य में वापस आए अयोध्या में, और उसके बाद राम का जन्म हुआ। और उसके बाद की कथा हमें मालूम है कि जब राम को वनवास भेजना पड़ा तो राम के वन जाने के बाद उस दुख से दशरथ इतने कातर हुए, इतने व्याकुल हुए कि उस दुख के कारण ही, पुत्र वियोग के कारण ही उन्हें अपने प्राण छोड़ने पड़े। तो चलो, इस सुंदर सी कविता के बहाने ये श्रवण की कथा भी आज हमने सुन ली। मित्रों, मैं पिछले कुछ समय से तुमसे बता रही हूँ कि मेरे एक फेसबुक मित्र हैं श्री अनंत कुलकर्णी, पुणे में रहने वाले, तो उनके लिखे हुए कुछ सरल संस्कृत वाक्य जो संभाषणों के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं वो हम पढ़ते आ रहे हैं। आज भी उसी कड़ी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उनके कुछ और वाक्य हम देखेंगे जो कि बहुत ही सरलता से वो लिखते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माँ दुर्गा सभी भूतों के बीच विद्या के रूप में विराजमान है, विद्या के लिए समर्पण के रूप में विराजमान है, अर्थात जिनके कारण लोगों में विद्या के अध्ययन की बुद्धि जागती है, ऐसी माँ दुर्गा को बारंबार नमस्कार। अब अगले एक पाठ में कुलकर्णी जी लिखते हैं, सुखस्य दाता न कोपि अन्यः, सुख का दाता दूसरा कोई नहीं है, तथैव दुखस्य अपि न कोपि अन्यः दाता, इसी प्रकार दुख देने वाला भी दाता दूसरा कोई नहीं है। कटुफलम प्राप्तम स्वकर्मस्य एव, अगर हमें कभी कड़ुआ फल मिलता है तो वह अपने कर्मों के कारण, और मधुरम फलम लब्धम स्वकर्मस्य एव, और हमें मधुर फल मिलता है वह भी स्वकर्मों के कारण, अपने स्वयं किए हुए कर्मों के कारण। अतः उच्चते, इसीलिए कहा गया है, गहना कर्मणो गति ही। कर्म की गति गहन है, महान है, क्योंकि यह कर्म हर एक व्यक्ति को अपना अपना फल दिए बिना नहीं छोड़ता है। वैसे मित्रों, तुम्हें ये बता दूं कि यह जो वाक्य है गहना कर्मणो गति ही, यह भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा हुआ वाक्य है। कहीं कहीं अपनी परीक्षा में अपने निबंधों को अच्छा बनाने के लिए जहाँ तुम्हें कोटेशंस की या उद्धरणों की आवश्यकता हो तो ये एक अच्छा उद्धरण याद रखने के लिए तुम्हारे पास हो गया। अब आगे एक जगह श्री कुलकर्णी जी लिखते हैं, किम बालकः प्रथमं व्याकरणं पठति, क्या छोटा बच्चा पहले कभी भी व्याकरण की पढ़ाई से आरंभ करता है। तस्य लिपि ज्ञानम अस्ति वा, क्या उसे लिपि का ज्ञान होता है, क्या वह लिखना जानता है। और इसके उत्तर में आगे लिखते हैं, मातृ पितृ भ्रातृ भगिनी मुखात श्रुत्वैव, माता पिता बहन भाई के मुख से सुन सुन करके अस्पष्टम उच्चारणम करोति शिशुहु, जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, वह अस्पष्ट उच्चारणों को करते करते आगे सीखता है। शनैः सहा वक्तुम प्रयत्नते, वह धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है और पहले वह बोलना सीखता है और लिपि या व्याकरण की बात वह बाद में सीखता है। तो संस्कृत विषये तथैव चिंतनम उपयुक्तम भवेत वा, तो क्या बच्चों को संस्कृत पढ़ाने में हमें इसी नीति का पालन करना अच्छा होगा। यह प्रश्न उन्होंने पूछा है उन सब बच्चों के लिए जो व्याकरण से डरते हों और कहते हों कि व्याकरण से पहले हमें सीधे संस्कृत बोलने की पढ़ाई करवाइए, गलतियां हम करेंगे और सुधार भी लेंगे, धीरे धीरे व्याकरण समझ में आएगा। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि अच्छा व्याकरण तो सूत्रबद्ध है, एक फॉर्मूले की तरह है गणित के, तो मैं इसको पहले समझ लेती हूँ तो मेरी बाकी पढ़ाई सरल होगी। ये दोनों बातें ही अपनी अपनी जगह सही हैं और दोनों को मिलाप करते हुए अगर हम चलेंगे तो मेरा मानना है कि हमारी प्रगति और अधिक तेजी से होगी। लेकिन किसी के मानने न मानने की बजाय ये हर एक पढ़ने वाले के अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसे जो रास्ता चाहिए वही चुन लेना चाहिए। श्री कुलकर्णी जी आगे एक और जगह लिखते हैं, संपन्ना आंध्र यात्रा सफला आंध्र यात्रा, अर्थात उन्होंने आंध्र प्रदेश में यात्रा की, वह संपन्न हुई और सफल भी रही, उसी के विषय में वह बता रहे हैं। कोटगीरतः कारयानेन निजामाबाद रेलवे स्थानकम, यात्रा समाप्त करने पर पहले वह कोटगीरत से कार से चल करके निजामाबाद रेलवे स्टेशन तक पहुँचे, तथा रेल यानेन पुणे महानगरम प्राप्तः, उसके बाद रेल से चल करके पुणे महानगर में पहुँचे। पंचदशः संस्कृतज्ञैः सह वार्तालापस्य अवसरः प्राप्तः, तो यह आंध्र यात्रा सफल क्यों बताते हैं? वह कहते हैं कि पंचदशः संस्कृतज्ञैः सह वार्तालापस्य अवसरः प्राप्तः, 15 संस्कृत विद्वानों के साथ उन्हें वार्तालाप का अवसर प्राप्त हुआ। फेसबुक तंत्रम विशदीकृतम तेभ्यः, उन सबों को कुलकर्णी जी ने फेसबुक का तंत्र विशद करके बताया, समझाया कि फेसबुक का प्रयोग, फेसबुक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ते सर्वे प्रमुदिताः, वे सारे प्रमुदित हो गए, आनंदित हो गए, खुश हो गए। मित्रों, एक बात और है, हमारा कार्यक्रम सुनने वाले विशाल शर्मा, इन्होंने मुझे एक छोटा सा पाठ लिख करके भेजा है। इनका गांव है पिड़ावा, जिला झालावाड़, और ये तुम लोगों के लिए एक छोटा सा पाठ लेकर के आए हैं चतुर्थी विभक्ति के लिए। तो ये लिखते हैं कि चतुर्थी के कारक को संप्रदान कहते हैं और संप्रदान का अर्थ होता है देना, दान करना। तो जब किसी को कोई बात दी जाती है तो चतुर्थी विभक्ति लगती है, जैसे नृपः भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, अर्थात राजा भिक्षुक को कपड़े देता है। इसी प्रकार जब हम किसी को नमस्कार देते हैं तब भी चतुर्थी की ही विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामाय नमः। अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तब भी चतुर्थी ही लगेगी, जैसे पिता पुत्राय आशीर्वादम ददाति। आगे विशाल श्लोक लिखते हैं कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, वृक्ष परोपकार के लिए ही फलते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए गायें दूध देती हैं। और परोपकाराय संताम विभूतयः, संतों की विभूति भी, संतों का जन्म भी, संतों के कर्म भी परोपकार के लिए होते हैं। तो ये श्लोक फटाफट याद कर लो कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय संताम विभूतयः। और अब हम अपना कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करेंगे। सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो।